नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सहअध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर और सुगियानो ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा की बैठक की। अध्यक्षता करते हुए पदभार ग्रहण करने के बाद यह उत्तर बंगाल क्षेत्र की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान ने भारत के पहली पारी में 564 रन के जवाब में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पहली पारी समाप्त घोषित कर दी थी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इन स्थानों पर अगले 4 दिनों तक लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।